Shanti. शास्त्रों में सृष्टि के रचना की कहानी है। ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा और जब सृष्टि की रचना का कार्य किया तो सोचा कि यह कार्य भार किसी के तो कंधे पर डालना चाहिए। कब तक मैं अकेला करता रहूं? तो चार मानस पुत्रों को निर्माण किया, सनक, सनत, सनंदन, सनातन। और प्लान ऑफ एक्शन था कि इनको सृष्टि की जिम्मेवारी दे दी जाए और मैं लाइफ ऑफ रिटायरमेंट। व्यतीत करूं। पर ये जो चारों कुमार थे ऐसे तपस्वी थे और ब्रह्मचारी थे, और फर्स्ट स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट नारद को जब ये बात पता चली ब्रह्मा की, तो वो तुरंत पहुंच गया चारों कुमारों के पास और कहने लगा कि तुम्हारे पिताजी ने सोचा है कि तुमको इस सृष्टि का कार्यभार सौंप के वो रिटायर हो जाएंगे। पर वो ऐसे वैरागी थे, रातों रात निकल पड़े बिना पिता को बताए और सोचा कि विष्णु को अपना गुरु बनाएंगे और अपना योगी तपस्वी सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु बहुत निराशा हुई जब विष्णु के भवन में पहुंचे तो देखा लक्ष्मी जी पांव दबा रही है। हम ठहरे सन्यासी और ये ऐशो आराम, ये हमें क्या शिक्षा देगा? निकल गए, उदास हो गए एकदम वहां से। इनफ इज इनफ, सोचा शंकर जी के पास चलते हैं। तब तक शंकर जी को पहले ही पता चल गया कि विष्णु जी के पास देखा तो ऐसा हो गया, और मेरी भी तो गृहस्थी है, मुझे देखकर शायद ये लौट जाए, इसलिए तुरंत कैलाश का त्याग कर दिया और एक नया रूप धारण किया जिसको भारतीय संस्कृति कहती है दक्षिणामूर्ति। चिन्मुद्रा में मानसरोवर तालाब के उत्तरी भाग में जहां से वो चारों आ रहे थे उदास, वहां पर ध्यान मग्न हो गए, और जैसे ही उनको आते देखा तो सीधा समाधि में चले गए। और कहा जाता है वो सबसे पहला उपदेश था इस विश्व को, और उस उपदेश में कोई शब्द नहीं थे, वो मौन उपदेश था। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्न संशया, वो मौन व्याख्यान था, मौन उपदेश था, इसलिए शिव को आदि गुरु कहा जाता है, शिव को आदि योगी कहा जाता है, और भक्त उसे आदि योगी का आह्वान करते हैं। कैसे आह्वान करते हैं? दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शिव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, आदि योगी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ऐसा मानते हैं। वो परम तत्व है, जो परमात्मा है उसे शिव कहा है। शैव संप्रदाय है भारत में, पांच संप्रदायों में, पहला वैष्णव विष्णु की पूजा, दूसरा शैव शिव की पूजा, तीसरा शाक्त शक्ति की पूजा देवी की पूजा, चौथा गणपत्य गणपति की पूजा, और पांचवा सूर्य की उपासना। पांच प्रकार की उपासना करने वाले पांच ग्रुप है, उसमें से शैव जो है उनके लिए शिव कोई शंकर नहीं है, वह आदि है, आदि शिव, आदि योगी उसको कहा गया है। दिखाया है कि आदि योगी तपस्या में है और अचानक उसे सत्य प्रकट हो गया, सत्य का पता चला, और वो साथ, और उसे लगा कि ये संदेश सबको दूं पर कौन सुनेगा, सब चले गए, केवल सात आत्माएं रह गई, और वो पीछे पड़ गई उस आदि योगी के कि हमको ज्ञान सुना, हमको योग का उपदेश दो, पर इन्होंने नहीं सुनाया। उसने कहा कि तुम अभी तैयार नहीं हो, ये सातों ऋषि तपस्या में लग गए, ऐसा दिखाया है, कई वर्षों तक तपस्या करते और जब तपस्या से बहुत तेजस्वी हो जाते हैं तब शिव प्रकट होते और कहते अब तुम योग्य हो, और सबसे पहले योग सृष्टि पर यदि किसी ने सिखाया है तो वो शिव ने सिखाया है, ऐसी मान्यता शैव की है। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय जाता है, उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय, इसलिए शिव की पूजा सबसे पहले कहां चालू हुई? दक्षिण में, फिर ऊपर आई शुरुआत में एकदम, या फिर भक्ति का आरंभ ही दक्षिण में हुआ है, उत्तर भारत में तो बाद में आई है। दूर उस आकाश की गहराइयों में, और शिव अर्थात मौन, शिव अर्थात आदि योगी एक नदी से बह रहे हैं, आदि योगी शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे, सन्नाटे टपक रहे शून्य, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। योग के स्पर्श से क्या करना है, योग में ही करना है, श्वास श्वास सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उत्तरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छननन, श्वास शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन। जैसे वो महायोगी, वो तपस्वी, उसके लिए भगवान परमात्मा इन शब्दों का प्रयोग नहीं है, वो परम सत्ता है, वो महायोगी, वो आदि योगी मुझ में प्रवेश करे और योग धारा बहने लगे। ये गीत सबसे पहले भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के सामने गाया हुआ है। ईशा फाउंडेशन है, वहां पर शिवरात्रि का जब प्रोग्राम था तब ये गीत गाया था। पिस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, मेरा अस्तित्व ही मिटा दो, ये जो मैं है इसको खत्म कर दो, पूर्ण होने दो मुझे, जब तक ये मैं नहीं हटता तब तक आत्मा पूर्ण नहीं होती, होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, ये रस्म है अब इसको करो भस्म करने वाली, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी, योग उत्सव हो जाए ऐसा रंग भर दो आदि योगी, बज उठे ये मन सितारे झनन 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 झनन, श्वास शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन घनन घननन, उत्तरे मुझ में आदि योगी। तो दिखाया जैसे ही वो सात कुमार आए और जैसे उन्होंने देखा कि शंकर जी तो ध्यान मग्न है और उनका वो मौन मुखमंडल, उनकी वो मौन मुद्रा, वो चिन्ह मुद्रा जैसे ही देखी, उन्हें लगा कि बस यही हमारे गुरु है, और सामने बैठ गए और सबसे पहले योग का उपदेश शिव ने उनको दिया, अर्थात शिव ने मानवता को इस धरा पर सबसे पहले उपदेश दिया, इसके लिए शिव को आदि गुरु आदि योगी कहा जाता है। और जो सात सप्तऋषियों को दिया उस दिन की यादगार के रूप में क्या मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा। क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, क्योंकि सबसे पहले गुरु ने, शिव ही गुरु बनके उन सप्तऋषियों को और फिर इस सृष्टि के अलग अलग स्थानों पर उनको भेजा कि जाओ अब विश्व की आत्माओं को योग सिखाओ। तो योगी जीवन की भाषा क्या है, मौन। योगी जीवन की भाषा क्या है, संपूर्ण मौन, शब्द नहीं मौन संदेश। मौन सन्नाटे टपक रहे, मौन में सब कह रहे आदि योगी। तो केवल आदि योगी अब कहना नहीं है, क्या करना है, उत्तरे मुझ में आदि योगी, मैं खुद ही वो योगी बन जाऊं और योगी जीवन की, अलौकिक जीवन की भाषा कौन सी है, मौन। तो बाबा ने क्या देखा, कौन से बच्चों को देखा, एक तो जो सामने बैठे हैं उनको देख लिया जो भाग भाग के आए, पर उनको भी देखा जो आए नहीं है, जो अपने ही स्थानों पर बैठे हुए हैं, एक ही स्थान पर बैठकर जो सेवा कर रहे, एक ही स्थान पर बैठ के जो बाबा को याद कर रहे, शरीर कहीं खिला नहीं है वही है पर मन यहां आ गया है, और धीरे धीरे वाचा की सेवा कम होती जाएगी और धीरे धीरे शरीर से हिलना डुलना कम होते जाएगा, धीरे धीरे मन सा ही बढ़ता जाएगा, मन सा याद, मन सा सेवा, और इसी का अधिक महत्व है। तो दो डबल स्वभाव को बाबा ने देखा, साकारी और। क्या कह रहे थे बच्चे बाबा से? तीन प्रकार की बातें कह रहे थे। कौन सी प्रभाकर भाई? क्या सुना रहे थे बाबा को? और बाबा क्या सुन रहे थे मौन में? एक तो दिल की बातें कह रहे थे, दूसरा परिस्थितियों की हलचल, परिस्थितियों का हालचाल सुना रहे थे, प्रवृत्ति की परिस्थितियों की हालचाल, और तीसरा सेवा समाचार। हमारी बाबा से जो बातें हैं वो इन तीन भागों में विभाजित है। या तो हम अपने दिल की बातें बताते रहते हैं, दूसरा परिस्थितियां बहुत ही घनघोर है बाबा, कुछ करो इनका, उभारो इन परिस्थितियों से, और तीसरा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा भी करता हूं और मैं वैसा भी करता हूं, मैं क्या क्या करता हूं बाबा कितना बताऊं आपको, थक जाओगे आप, इतना मैं करता हूं, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं ऐसा भी करता हूं, मैं वैसा भी करता हूं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात देवता, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात निर्माण और निर्माण, निर्माण अर्थात मान नहीं, निस्वार्थ। तीनों को कैसे सुधारा जाए? या ठीक किया जाए? अभी गड़बड़ है। दिल की बातें जो बाबा से की जा रही है, सबसे पहले तो उसमें सच्चाई हो, ऑनेस्टी। कितनी सच्चाई से बातें कही जा रही है। विदेशी भाई बहने इस पर ही बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, उनका सारा फोकस इस पे ज्यादा होता है, ऑनेस्टी, हम ऑनेस्ट कितना है बाबा के साथ। और भारत वाले सबसे कम चर्चा करते हैं इस पर। सच्चाई कितनी है? जो हूं जैसा हूं तुम्हारे सामने हूं, सच्चाई। ये जो बातें हैं दिल वाली, इसको सच्ची करना, इसमें झूठ मिक्स ना हो, उसमें दिखावा मिक्स ना हो, इसमें आडंबर ना हो, इसमें असत्य ना हो, मैनिपुलेशंस ना हो। महात्मा गांधी ने लिखा है कि जब मैं साउथ अफ्रीका में था, लंदन में गया था पढ़ने के लिए भारत से पहले पहले, मुझे बोलने ही नहीं आता था। इंग्लिश बोलने के लिए एक एक वाक्य को पहले ब्रेन में तैयार करता था, और फिर अगर किसी ने बोल दिया तो इतनी मुश्किल हो जाती थी, क्या बोलूं समझ में नहीं आता था, और बहाने बनाता था कुछ ना कुछ, और अवॉइड करता था कि आज नहीं बोलना है मुझे। पर उन्होंने कहा कि ये जो साइलेंस था मेरे लिए शील्ड थी, एक कवच का काम किया। क्यों? तीन कारणों से। पहला, हर व्यक्ति सत्य को मॉडिफाई करना चाहता है, छेड़छाड़ करता है। दूसरा, उसको या तो अतिशयोक्ति करता है या तो उसको दबाता है। प्रोपेंसिटी टू एग्जैजरेट, टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रूथ इज नेचुरल विथ मैन, एंड साइलेंस इज नेसेसरी टू सरमाउंट इट। उन्होंने ये लिखा कि मुझे पहली बार पता चला कि हर व्यक्ति, हर स्पीकर जो बोलता है उसको एक चिट्ठी आती है, तब तक वो रुकता ही नहीं है कि अब रुको। हर व्यक्ति इतना बोलना चाहता है कि चिट्ठी भेजी जाती है, क्योंकि हर अपने अनुभव को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताना चाहता है, या तो उसको दबाना चाहता है सत्य को, या उसके साथ छेड़छाड़ करता है सत्य के साथ। इसलिए मौन की आवश्यकता है। मौन में ये तीनों चीजों की झंझट ही नहीं है। तो दूसरी भाषा परिस्थितियां, रब की रजा में हमारी रजा है, जो उसकी रजा वो हमारी रजा, स्वीकार कर लेना। भक्तों ने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया ये समझ कर कि ये दुख भी भगवान दे रहा है, और खुशी से स्वीकार कर लिया। यहां तो हमें पता है वो नहीं दे रहा है, फिर भी हम स्वीकार नहीं करते। भक्तों ने बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया, बीमार पड़ गए उसकी इच्छा, राम की इच्छा, सब राम की इच्छा, सिपाही पकड़ के लेके गए राम की इच्छा, रात भर जेल में रहा राम की इच्छा, अब छूट गया वो भी राम की इच्छा। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलिया है मेरे पास आशियाना, कब तेरी बिजली गिर के मेरे आशियाने को भस्म कर दे। इसलिए हे खुदा राजी तेरी रजा में। परिस्थितियों के बारे में इतनी कंप्लेंट क्यों है अरविंद भाई, क्यों कंप्लेंट है ब्राह्मणों को परिस्थितियों के बारे में? हर एक चाहता है कि मेरे कंफर्ट जोन में कोई ना आए, कोई छेड़छाड़ ना करे, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये यहां मैं, ये मेरा कमरा, ये मेरी रूम, ये मेरी ड्यूटी, बस इसमें कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं डाउनलोड न्यू कंफर्ट जोन्स। जो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है ना, वहीं पर हमारी उन्नति होती है। नए कंफर्ट जोन डाउनलोड करो और उसको कंफर्ट जोन बनाओ। एक बार वो बन गया फिर दूसरे और डाउनलोड करो, फिर वो बन गया फिर और कठिन 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 परिस्थितियां। आसान वाले काम, हमारी ड्यूटी नहीं है फोन आ जाए कि तुम आ जाओ, क्या करते हैं फिर? अभी मैं बिजी हूं बहुत। हमको याद है बहुत बहुत पहले जब हम MBBS पूरा हुआ और इंटर्नशिप जस्ट चालू हुई, फर्स्ट ही पोस्टिंग ऑर्थोपेडिक, तो अचानक एक सीरियस पेशेंट आ गया, इतना ज्यादा सीरियस कि उस समय सीटी स्कैन तो छोटे वो था ही नहीं, वहां पर अभी अभी आया था सीटी स्कैन। तो उस पेशेंट को नागपुर लेके जाना था, और VIP था वो, और हेड इंजरी थी, और पूरा उसको एनेस्थेटिस ने ट्यूब वगैरह डाला और कहा कि इसको तो शिफ्ट करना है, कौन जाएगा? कोई भी तैयार नहीं हुआ, सब 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में आता हूं करके भाग गए। तो हम बीच में आ गए, तो उन्होंने पूछा तुम जाओगे? हमने कहा जाऊंगा, हां कर दिया, और क्या करना है वो कुछ भी नहीं पता। पर हमको लगा ये चैलेंज है, इसको ले लेते हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो सीखेंगे। और वो जर्नी इतनी भयंकर जर्नी थी, 5-6 घंटे की, रात भर कुछ भी पता नहीं था, ना इंजेक्शन देना पता था ना कुछ करना पता था, सब लेके रख दिया, ये करना वो करना वो करना। वो लेके जा रहे वो पेशेंट को, वो पूरा ट्यूब, और उसमें ट्यूब में से खून ही खून आ रहा है, पूरा रेड रेड, बीच में ऑक्सीजन खत्म हो गया, क्या करना है अब? फिर वो एम्बुलेंस को दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए वर्धा, वहां पर भी सबको उठाया, फिर वो लाइन भी आउट हो गई, वो टॉर्च में नई लाइन, वहां से सिलेंडर चेंज किया, वो सुबह सुबह सूरज हो उगते उगते वो पेशेंट को पहुंचाया। पेशेंट तो बहुत सीरियस था, सीटी स्कैन के टेबल पे वो, हाँ वो सब सब बहुत सारी चीजें थी उसमें, वो भक्ति का समय थे, हनुमान चालीसा ये बचना चाहिए, पर वो अनुभव बहुत अच्छा अनुभव था। जा रहे थे उस पेशेंट को लेके तो बेचैन थे, और फिर आ रहे थे तो वो मर चुका था, डेड बॉडी लास्ट में ला रहे थे वापस आते समय, तब आगे बैठ के निश्चिंत थे, सोच रहे थे क्या है शरीर आत्मा, ये ज्ञान तो पता नहीं था, पर सोच रहे थे ये क्या है, कौन चला गया, कौन था जो उसमें था अब तक। तो न्यू चैलेंजेस, जो चीज आती नहीं है उसमें क्या कह देना, हाँ, और फिर सीखना पूछ पूछ के। नहीं, सिखाने वाले आ जाएंगे। गो थ्रू अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम विकास होगा, परिणाम विकास होगा। इसके लिए कोई भी चीज को ना नहीं कहना, ठीक है ना माता जी? टॉपिक अगर मिल जाए तो तुरंत हाँ कह देना, फिर सोचना क्या करना है, फिर पता चला हमको तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, पर पहले हां कर देना, फिर अपने आप सीखोगे। तो ना नहीं कहना, इसके लिए बाबा ने हाँ जी कहा ना, दादियों ने सब कैसे सीखा, हाँ जी कह दिया, ना माना नास्तिक, हाँ कर देना बस। अब हमको कुछ भी नहीं पता था ना, इंजेक्शन देना वो सिस्टर सिखा रही, ये हुआ तो वो देना, वो पूरी रात भर पल्स और लिखते जा रहे, पल्स इतना है अभी, पल्स इतना है, पांच पांच मिनट में लिखते जा रहे, अभी सीखना चाह रही है, ये 20 साल पहले की बात है। तो हां कह देना, अपने आप सीखता है आदमी, ना कह दिया मतलब ब्लॉक, फिर वो जो कंफर्ट जोन है उसी में रहेगा लास्ट तक। थ्रो योर सेल्फ इन टू डिस्टर्बेंस, लीव डेंजरसली। फ्रेडरिच नीट्शे ने क्या कहा है, जोखिम भरा जीवन जियो, खतरों खतरों भरा जीवन, खतरों में जाओ। तो परिस्थितियों की कंप्लेन नहीं चाहिए, अच्छा है ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई, जो कुछ भी नहीं करते उनके सामने कोई परिस्थितियां नहीं आती, परिस्थितियां तो उनके पास आती है जो कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं। चैलेंजेस जिनको, जो कुछ भी नहीं कर रहे उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्या कहेंगे, वो कितना अच्छा नहीं है, वो वैसा ही रहता है व्यक्ति। कहते किसको है जो कुछ कर रहा है, अगर किसी की ग्लानी हो रही है, निंदा हो रही है, इसका मतलब अंदर से सक्रिय है वो, ठीक ठाक है वो, कुछ कर रहा है। जिसके बारे में कुछ भी कुछ नहीं कहते अर्थात वो कुछ नहीं कर रहा है। इसके लिए सक्रियता की निशानी को भी समझो, ये सब होगा क्योंकि हर इंसल्ट, हर अपोजिशन और हर क्रिटिसिज्म व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। विवेकानंद ने लिखा है, मैं कई जगह गया, वहां पर ऐसा सत्कार हुआ, ऐसा आदर हुआ, लोगों ने वो रथ पर बिठाया के घुमाया, और कहीं कहीं गया तो लोगों ने कहा ये चंडाल आ गया, खाते पीते कुछ नहीं, भीख मांगते हैं, नौकरी करनी चाहिए, सन्यासी बने बैठे हैं जवानी में और तगड़े बहुत है खा पी के, काम कुछ नहीं करना है इनको, काम चोर। ये ऐसे भी मिले, कहीं कहीं महलों में सोया, गलीचों में सब इसमें चला, और कहीं कहीं झोपड़ियों में रहने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, कहीं कहीं छप्पन भोग, तो कहीं कहीं लोगों ने गांव में भी आने नहीं दिया, कहा कि तुम सन्यासी हो भागो यहां से, कुछ काम के नहीं, ढोंगी होते हैं सारे सन्यासी। तो ये तीन बातें, फिर इसके रिस्पांस में बाबा ने तीन बातें कही, कौन सी तीन बातें, नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा। इन तीन भाषाओं की तीन विशेषता है, कौन कौन सी, ये रूहानी योगी जीवन की भाषा है, ये शक्तिशाली भाषा है, और तीसरा इन भाषाओं का अनुभव केवल किस अवस्था में होता है, अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस की स्थिति में ही इनका अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है योगी जीवन में मौन, साइलेंस, चुप। एक सन्यासी ने अपनी जीवन कहानी लिखी है और उसमें उसने अपने जीवन का पूरा अनुभव लिखा है कि कैसे कैसे, मैं जब आश्रम में था, उसने लिखा कि मैं स्कूल से ग्रेजुएशन हुआ और सीधा आश्रम गया, 8 साल तक सन्यासी रहा और वो मेरा जीवन कैसा था। उसने लिखा उस आश्रम में 60 सन्यासी थे, उनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर तो 80 उम्र तक थी, अलग अलग वर्ग के थे। वहां पे हमें अपना भोजन खुद बनाना पड़ता था, वहां पे एक खेत था और इतना सिंपल था सब कुछ, बहुत ही सिंपल। कमरा जो था उसमें केवल एक बेड था, एक चेयर थी, एक डेस्क था और बेसिन और वॉशरूम, तो कॉमन बस इतना ही था। तो उसने कहा कि पहला जो साल था मेरा वहां पे, एज पर द कैथोलिक चर्च लॉ, वो पीरियड था सन्यासी का, और सेंट बेनेडिक्ट नाम का जो योगी था बहुत पहले, उसके रूल वहां पर चलते थे, अभी भी इस जमाने में भी जो कि कई वर्षों पहले हुआ था, तो वहां पर एक नियम था, वो था कुछ भी ना बोलना, मौन रहना, साइलेंट। यहां तक कि इतना ध्यान रखना है कि दूसरों का साइलेंस भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। यहां तक कि इतना ध्यान रखना है कि आश्रम के परिसर में भी आवाज नहीं करना है, क्योंकि शायद हमने आवाज की और कोई योग कर रहा है, उसको योग डिस्टर्ब हो रहा है। यह सेम नियम मधुबन में अप्लाई होता है। मधुबन के पूरे कैंपस में बातें करते करते जाने की आदत है हमको, हमें पता नहीं अंदर कौन योग कर रहा है, शायद उसका योग हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। वो तो बहुत आगे की बात है, ये तो बहुत सूक्ष्म में बातें कह रहा है। ये कह रहा है कि इनर साइलेंस, उसमें दूसरों को जज करना, इससे दूर रहना, नॉइज से दूर रहना। उसने कहा कि पहले पहले तो हमको ऐसा हो गया, यहां कंप्यूटर, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर कुछ नहीं, ये सब अभी आया है, केवल क्या सुनाई देता था, नेचुरल साउंड्स ऑफ बर्ड्स, बस पक्षियों की आवाजें के अलावा और कुछ भी हमको सुनाई नहीं देता था। और कितना घंटा साइलेंस, कभी कभी 48 आवर्स, 72 आवर्स, कभी कभी 7 दिन, कभी कभी 10 दिन कुछ भी नहीं बोलना, स्थूल भी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि कोई कुछ बोलता ही नहीं था, सब अपने अपने काम चुपचाप करते थे। केवल सुबह सुबह क्लास होती थी, क्लास में जाके बैठते थे, प्रवचन होता था, उसमें भी एक दो शब्द कभी कभी मुख से निकलता था, कभी कभी कुछ पढ़ लेते थे किताब पर, किताब भी नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, केवल मौन में रहना, यह था उसमें। आगे उसने लिखा, ना टेलीविजन ना रेडियो, कुछ भी नहीं, केवल मौन में। धीरे धीरे तो यह बहुत कठिन था, बहुत हार्ड लगा, पर धीरे धीरे फिर इसकी आदत पड़ती गई। पहला दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, चौथे दिन में एकदम से आनंद आ गया। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ती गई। और उसने फिर लिखा, अभी तो ऐसा हो गया है कि बोलने की इच्छा ही नहीं होती है, पर ऐसा भी लिखा कि अभी बोलने के बाद भी इन्नर का आंतरिक मौन डिस्टर्ब नहीं होता है। बोला भी तो भी ऐसा लगता है कि बोल नहीं रहे, क्योंकि 10-10 साल तक मौन में रहे हैं ये लोग। ऐसी एक ट्रेनिंग है विपाशना, सुना है, जहां पे एक ही चीज करनी होती है, मौन। किताब नहीं, डायरी नहीं, पेन नहीं, पेंसिल नहीं, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, कुछ भी नहीं। छोटा सा एक कमरा, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स है जो हमने देखे हैं, छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, 100-100 कमरे बने हुए हैं। बैच आती है सुबह, शाम को सब कुछ जब्त हो जाता है, एक एक कमरे में एक एक चला जाता है, और 8-8 घंटे एक ही कमरे में। क्या करो, श्वास की तरफ ध्यान रखो, पहले पागल जैसा हो जाता है एक दिन कुछ और करना है, कुछ करना है, किससे बात करूं, किसी के साथ शेयर करूं, पहला दिन भयंकर, छोड़ आधे लोग भाग जाते कई कई बार। दूसरा दिन जो जबरदस्ती आते हैं वो भाग जाते हैं, या उनके मां बाप जिनको भेज देते हैं, जो खुद ही आते हैं अपनी इच्छा से वो नहीं भागते। दूसरा दिन धीरे धीरे कम होना, मुश्किल थोड़ी कम। तीसरा दिन, चौथा दिन असली दिन होता है, जहां पर जागृति आती है, जो उपवास के लिए है वो मौन के लिए भी है। पहला उपवास का दिन बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल। दूसरा उपवास का दिन बहुत मुश्किल। तीसरा उपवास के दिन, तीसरे उपवास के रात में एकदम विजन्स दिखाई देने लगते हैं, कुछ कुछ होने लगता है। नवरात्रि जो करते हैं उनके अनुभव है, 7 दिन की नवरात्रि उपवास। चौथा दिन सहज हो जाता है, चौथे दिन तक लगता है बस उपवास तोड़ दूं, पानी पी लूं, पर निर्जल, न पीना न खाना, पर असली आनंद चौथे दिन आता है। वैसा ही मौन का भी है। पहले 3 दिन किसको बताऊं, फोन करूं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बताऊं, घर पे फोन करूं, सब ठीक है, भोजन ऐसा है, जो विपाशना करते उन्होंने अपने अनुभव ऐसे सुनाए। पर जैसे ही चौथा दिन आ गया, घर गया, किसको कुछ नहीं सुनाना है, किसी से कुछ बात ही नहीं करनी है, मौन में चले जाते। और यहां पर अनुभूतियां चालू होती है अध्यात्म की, यहां से शरीर से डिटैचमेंट चालू हो जाता है। तब तक तो देहवान में ही रहते हैं 3 दिन, रियल इनिशिएशन तो चौथे दिन चालू होता है। तो संकल्प की भाषा सबसे मूल भाषा है, सबसे मूल शक्ति है। हम यहां हैं, किसी को भी वो भाषा से हम बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते। साइंस अभी तक पहुंचा ही नहीं है वहां तक, बाबा ने कहा। साइंस तो अभी बचपन में है। संकल्प की भाषा, साइंस को तो प्रमाण चाहिए। साइंस डजंट एक्सेप्ट नॉन फिजिकल थिंग्स, साइंस को प्रमाण चाहिए। आत्मा बताओ माइक्रोस्कोप में, परमात्मा माइक्रोस्कोप में दिखना चाहिए तो मानूंगा, नहीं तो नहीं। स्पिरिचुअल माइक्रोस्कोप ये टॉपिक है, कोई क्लास ले सकता है इसमें बाद में। तो ये तीन भाषाएं, तीन भाषाओं के तीन फायदे कौन कौन से? समय कम, मेहनत कम, सफलता ज्यादा। ये तीन भाषाओं को बोलने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, कौन सी? बुद्धि की लाइन क्लियर। बुद्धि की लाइन क्लियर के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है, कौन सी? कहीं यहां वहां बुद्धि जाने ही नहीं देना है। पढ़ाई, बाप, पढ़ाई, सेवा, बस। ब्राह्मण जीवन में हमने ये तो सुना है कि बाबा को साथी बनाओ, पर और एक चीज है, ज्ञान चिंतन को साथी बनाओ। कितनी अच्छी बात है। कल कहा था नंबर वन प्यार क्या है? बाप का परिचय देना, सेवा। लोग तो ना उसकी महिमा जानते, बस पक्षी जैसा चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। बाप को तुम जानते हो, उसकी महिमा तुम जानते हो। केवल उसकी सेवा में बिजी रहना, केवल उसके ज्ञान के चिंतन में बिजी रहना, उसकी याद में बिजी रहना। जो केवल इन तीन चीजों में बिजी, और बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन कहां है, कौन कहां गया, कौन जाने वाला है, कौन फिराक में है चतुर्भुज बनने के, कोई मतलब नहीं है किसी से, बस इसी में बिजी है। यही तो बुद्धि बलवान बनेगा। और फिर एक तीसरा पहलू है इसी मुरली में, हिसाब किताब कैसे चुकतू करे, कैसे चुकतू करे? बुद्धि बल से। कैसे चुकतू करे? तीन प्रकार के हिसाब आएंगे, मन वाले, शरीर वाले और संबंध वाले। हल्की टक्कर, सहयोगी है पर सहयोगी में भी हल्की टक्कर होगी, भगवान ने बोल दिया तब 85 में। कैसी टक्कर होगी? हम किसी से मांगने गए टोली दो, उसने कहा लो, हमको कहा और चाहिए, उसने कहा और नहीं मिलेगी, जिलेबी बन रही है, हमने दो ली, थोड़ी देर के बाद क्या बन रहा है? घेवर बन रहा है। हमने और मांगा, कहा कि सबको दो ही मिलेंगे, नहीं मिलेगी। हम जाके बैठ गए, देखा दूसरा गया, वो तीन लेके आ गया। हल्की टक्कर, किसी ने कुछ बोला नहीं पर टक्कर हो गई, किसी ने कुछ बोला नहीं, कहा नहीं, कुछ नहीं, पर संबंध में, सहयोगियों में टक्कर हो गई। मौन में ही समझ लिया, हम भी देख लेंगे, आना अब हमारे पास। तो ये तीन प्रकार के हिसाब किताब आएंगे, कैसे चुकतू करना है? बुद्धि बल। अगर बुद्धि बल नहीं है तो क्या होगा? यथार्थ निर्णय नहीं होगा, और यथार्थ निर्णय नहीं होगा तो क्या होगा? सफलता नहीं होगी। इसलिए बुद्धि बल को बढ़ाना है, योग बल को बढ़ाना है, और कैसे बढ़ेगा? इन तीन चीजों से, बाबा की याद, ज्ञान का चिंतन, और तीसरा सेवा। कितना हम सेवा कर रहे हैं? बाबा ने कहा जब तक सेवा नहीं करो, परिचय नया दो किसी को, खाना ही नहीं खाना है। नाश्ता कितने बजे कर रहे हैं? 8 बजे। तब तक किस किस को परिचय दिया? किसी को भी नहीं। या तो परिचय दो या नाश्ते का टाइम बढ़ाओ, दोनों में से कोई एक काम करो। क्या करेंगे कमलेश भाई? रात को नाश्ता करके सो जाएंगे। परिचय देना, ज्ञान सुनाना, स्वयं का तो चिंतन करो मुरली का। मुख से कुछ भी ज्ञान रतन निकलने चाहिए, बस रोज की जो मुरली है हमारे मुख से निकलनी चाहिए, सारे दिन पर अलग अलग समय पर। हाँ, मुख से किसी को बोलना आज की मुरली में अच्छा पॉइंट आया है, आपने सुना? मुझे याद नहीं आ रहा क्या था आज का स्लोगन, क्या था वो स्थिति, क्या था वो स्थिति ही फाउंडेशन है किसका, नहीं स्मृति फाउंडेशन है स्थिति का, ऐसा कुछ था ना, ऐसे ही था ना, ऐसे बोलना, हम बोल नहीं रहे बता रहे। तो ये ऐसे पूछना, किसी जो जिनको जो ज्ञान में नहीं उनको भी बोल सकते हमने कहीं सुना है, हमने कहीं सुना है, ऐसा होना चाहिए। वो कहेंगे हाँ अच्छा सुना, नए नए लोगों को सुनाना। कई लोग तो इसको ही सेवा करते हैं, फेसबुक का कुछ बनाते हैं और भेजते रहते हैं कुछ कुछ विचार। तो इस मुरली में मुख्य दो बातें थी, सबसे पहले तो भाषा, तो नई भाषा सीखनी है। भाषा सीखने के लिए लोग क्या करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं। भाषा सीखने के लिए क्या करते हैं, शब्दकोश डिक्शनरी रखते हैं, पॉकेट डिक्शनरी, मोबाइल में ऐप रखते हैं डिक्शनरी का। भाषा सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार बोलनी पड़ती है वो भाषा, तब सीखता है व्यक्ति। खाली बैठ के पढ़ते रहा शब्द निकालते रहा बोलना ही नहीं है, सीखेगा कैसे? क्योंकि भाषा में तीन चार चीजें आती है। सबसे पहला आता है शब्दकोश, बहुत शब्द होने चाहिए, एक। दूसरा उच्चारण, तीसरा उसका व्याकरण शुद्ध होना चाहिए और उसका अभ्यास होना चाहिए। व्याकरण अतिशय शुद्ध चाहिए, नहीं तो आती है जाती है, करती है बोलती है, शिव बाबा आती है और ब्रह्मा क्यों बोलती है, उलट पुलट कहती है। ये तीन चीज। तो एक तो भाषा सीखनी है, तो अलौकिक भाषा सीखने के लिए भी इसका व्याकरण को सीखना पड़ेगा। इसका शब्दकोश में शब्द कौन से है, मौन शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, उल्टा है यहां सब। और इसका अभ्यास अर्थात वो प्रैक्टिस जो सन्यासी योगी तपस्वियों ने प्रैक्टिस की थी, जो ब्रह्मा ने कितना लंबा लंबा समय तक प्रैक्टिस की थी मौन रहने की। और मौन रहना सबसे कठिन काम है संसार का, क्योंकि मन शांत कर देना है अंदर से। और दूसरी बात थी, एक तो भाषा और दूसरा हिसाब किताब। हिसाब किताब चुक तो करेंगे बुद्धि बल से, तो अपने बुद्धि को शक्तिशाली बनाने और उसके लिए तीन बातें कही, बुद्धि की लाइन क्लियर, बर्डन नहीं और बुद्धि शक्तिशाली। शक्तिशाली, लाइन क्लियर और कोई बोझ नहीं। बोझ कैसा, क्या क्यों कैसा, ये बोझ है। बुद्धि डबल बोझ हो जाती है, पहले तो हिसाब किताब और उसके बाद में ये व्यर्थ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सबको आदि योगी बन जाना है, मौन सन्नाटे को टपकने देना है इर्द गिर्द। हम बैठे हैं मूर्ति और मौन टपक रहा है। ओम शांति।
इस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, शाश्वत
शाश्वत।